जरा सोच कर देखिए, मतलब किसी इंसान की जिंदगी में सब कुछ तबाह हो गया है। एक ही झटके में उसका परिवार, घर, उसकी सारी जमा पूंजी सब खत्म हो गई है।
हाँ, मतलब एक इंसान पूरी तरह से टूट चुका है।
बिल्कुल। और ऐसे भयानक दर्द के समय में उस इंसान के सबसे करीबी दोस्त उसके पास आते हैं। अब आमतौर पर आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो उसे गले लगाएंगे, सांत्वना देंगे, लेकिन इसके बजाय वे उसके सामने बैठते हैं और एक लंबी दार्शनिक बहस शुरू कर देते,
जो कि असल जिंदगी में कोई भी सुने तो कहेगा कि ये क्या मजाक है।
सही कहा। वे उसे तर्क देकर समझाना शुरू करते हैं कि भाई, ये सारी तबाही यकीनन तुम्हारी किसी छिपी हुई गलती का नतीजा है। और मजे की बात यह है कि ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के दुख और उस पर समाज के रिएक्शन के सबसे पुराने और गहरे चित्रणों में से एक है।
और सच कहूं तो यही वो स्थिति है जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। जब कोई इंसान इतने गहरे संकट में होता है तो समाज उसे किस नजरिए से देखता है? दोस्त सांत्वना देने आए थे, लेकिन वे जज बन जाते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत ही उलझी हुई स्थिति है।
और इसी उलझन को, इसी जटिलता को आज हम डीकोड करने वाले हैं। आज के इस गहन अध्ययन का आधार है डॉक्टर जॉन वॉल्टन का द बुक ऑफ अय्यूब पर किया गया विश्लेषण। हम खास तौर पर 17 को देख रहे हैं, जिसमें अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच संवाद का पहला दौर होता है।
अध्याय 3 से 14 तक का हिस्सा।
हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी भी धार्मिक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम निष्पक्ष होकर मूल स्रोत में छिपे विचारों, अनुवाद की उलझनों और उन प्राचीन तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं जो आज भी, मतलब आज की दुनिया में भी, पूरी तरह प्रासंगिक हैं। हमें ये समझना है कि जब दुनिया उलट पुलट हो जाती है तो न्याय और धर्म के हमारे पुराने विश्वास कैसे काम करते हैं या कैसे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं।
तो इस चर्चा की शुरुआत उस बिंदु से होती है जहां अय्यूब एक गहरा विलाप करता है। मतलब अध्याय 3 में वो अपने जन्म के दिन को कोसता है, लेकिन यहां एक पेंच है। अगर हम सिर्फ आधुनिक अनुवादों को पढ़ें तो हमें पूरी तस्वीर नहीं मिलती।
अच्छा, मतलब अनुवाद में कुछ छूट गया।
बिल्कुल। अनुवाद में अक्सर सिर्फ श्राप देना या अंग्रेजी का कर्स शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन स्रोत के अनुसार प्राचीन हिब्रू भाषा में इसके लिए 3 अलग अलग शब्द हैं जिनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
अरे वाह, ये भाषाई पहलू बहुत दिलचस्प है। मतलब अलग अलग शब्दों का मतलब है कि अय्यूब की भावना का स्तर भी अलग होगा। तो वो 3 शब्द क्या है?
देखिए, स्रोत बताता है कि पहला शब्द है बराक, जो मूल रूप से एक व्यंजना या कूट शब्द है। दूसरा शब्द है कलाल, जिसका अर्थ होता है किसी अलौकिक शक्ति के शब्दों के साथ एक मंत्र या जादू करना जो किसी का नुकसान करे।
अच्छा, जैसे कोई जादू टोना या बद्दुआ देना।
हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन जब अय्यूब अपने जन्म के दिन को कोसता है तो वो इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करता, वो तीसरे शब्द का इस्तेमाल करता है, अरार।
अरार? तो ये किसी सामान्य श्राप या जादू टोने से अलग कैसे है?
अरार का अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। इसका सीधा मतलब है ईश्वर के संरक्षण को हटा देना या पूरी व्यवस्था का टूट जाना। जब अय्यूब अपने जन्म के दिन के लिए अरार का उपयोग करता है तो वो ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। वो असल में उस पूरी व्यवस्था, उस ब्रह्मांडीय आदेश को ही खारिज कर रहा है जिसके तहत उसका जन्म हुआ था।
मतलब वो चाहता है कि वो दिन कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो।
बिल्कुल, वो चाहते कि सब कुछ मिट जाए।
ये तो बहुत ही चरम रिएक्शन है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भारी बग आ जाए और सिस्टम को रिपेयर करने के बजाय कोई इंसान सीधा मेन पावर सप्लाई का प्लग ही खींच दे। वो चाहता है कि पूरा सिस्टम ही शटडाउन हो जाए, बस सब कुछ ब्लैकआउट हो जाए।
ये प्लग खींचने वाली तुलना एकदम सटीक है। अय्यूब की मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। और इसी संदर्भ में अय्यूब लिव्याथन में जगाने की बात करता है।
लिव्याथन, वो जो एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस माना जाता है।
हाँ, प्राचीन नजदीकी पूर्वी साहित्य में लिव्याथन अराजकता, अंधकार और अव्यवस्था का प्रतीक था। अय्यूब का जीवन इतनी बड़ी अराजकता में डूब गया है कि वो चाहता है कि ये लिव्याथन उठे और उसके जन्म के दिन को निगल ले, ताकि उस दिन का वजूद ही हमेशा के लिए मिट जाए।
बाप रे।
यहाँ एक बात जो स्रोत स्पष्ट करता है और जो मुझे लगता है कि आज के नजरिए से काफी चौंकाने वाली है, वो ये है कि उस प्राचीन इजरायली समाज में मृत्यु के बाद के जीवन या स्वर्ग नरक की कोई अवधारणा ही नहीं थी।
हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये अय्यूब की हताशा की असली वजह समझाता है। देखिए, आज के धर्मों में अक्सर ये माना जाता है कि अगर इस दुनिया में दुख है तो मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में या स्वर्ग में उसका इनाम मिलेगा।
हाँ, लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब हिसाब रखेगा। बिल्कुल। लेकिन अयूब के पास ये सांत्वना नहीं है। जब वो मृत्यु की कामना करता है तो वो मृत्यु को किसी समाधान या इनाम के रूप में नहीं देख रहा है, वो इसे सिर्फ एक बचाव के रूप में देख रहा है। उसके लिए मृत्यु का मतलब है दर्द का शून्य हो जाना,
मतलब बस एक एस्केप।
जी,
जब दर्द इतना गहरा हो तो इंसान स्वाभाविक रूप से पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों।
बिल्कुल,
ये एक बहुत ही मानवीय रिएक्शन है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन के विश्लेषण के अनुसार इस किताब का संदेश ये है कि शायद क्यों पूछना ही गलत सवाल है।
हाँ, डॉक्टर वॉल्टन यही तर्क देते हैं। ये किताब ये समझाने के लिए नहीं लिखी गई है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बल्कि ये सत्यनिष्ठा या अंग्रेजी में कहें तो इंटेग्रिटी के असली मतलब को खोजने की कोशिश है।
तो जब अय्यूब को सत्यनिष्ठ कहा जाता है तो स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आदर्श इंसान है जिससे कभी कोई भूल नहीं हुई, राइट?
बिल्कुल सही।
कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पैमाना किसी इंसान की परफेक्शन पर आधारित नहीं है। अगर वो निर्दोष होने का दावा नहीं कर रहा तो इस सत्यनिष्ठा का असली मतलब क्या है?
इसका असली मतलब है निस्वार्थ धार्मिकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अय्यूब जो भी अच्छाई कर रहा है या ईश्वर के प्रति जो भी निष्ठा दिखा रहा है, वो इसलिए नहीं है कि उसे बदले में कुछ फायदा, धन या सुरक्षा मिलेगी।
मतलब इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।
हाँ, वो अच्छाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सही है। ये किसी लेन देन या ट्रांजैक्शन पर आधारित नहीं है।
और मुझे लगता है यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है। अगर अय्यूब की अच्छाई किसी लेन देन पर आधारित नहीं है और फिर भी उसके साथ इतना भयानक कुछ हो जाता है, तो ये उसके दोस्तों की पूरी विचारधारा को हिलाकर रख देता है।
बिल्कुल, और यही हमें उन दोस्तों के मनोविज्ञान को गहराई से समझना होगा। उनके लिए ये सिर्फ अय्यूब का दुख नहीं है, ये उनके अपने विश्वासों पर एक बहुत बड़ा हमला है।
हाँ, क्योंकि वे तो एक ऐसे सिद्धांत पर विश्वास करते हैं जहाँ दुनिया न्यायपूर्ण है, कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा।
एकदम सही। अगर वे ये मान लें कि अय्यूब बेगुनाह है और फिर भी भुगत रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में कोई न्याय नहीं है, दुनिया अराजक है और कल को उनके साथ भी बिना किसी गलती के ऐसा ही हो सकता है।
और ये विचार किसी भी इंसान के लिए बहुत डरावना हो सकता है कि आप सब कुछ सही करें और फिर भी सब छिन जाए।
और इसी डर की वजह से वे अय्यूब को दोषी साबित करने पर तुल जाते हैं। उनका पहला मित्र एलिफाज इसी कोशिश में सबसे पहले बोलता है। वो अध्याय 4 में अय्यूब की सत्यनिष्ठा पर सीधा हमला करता है। एलिफास को लगता है कि अय्यूब खुद को जरूरत से ज्यादा धर्मी मान रहा है।
तो वो क्या तर्क देता है?
अपनी बात में वजन डालने के लिए एलिफास एक बहुत ही रहस्यमयी दर्शन का दावा करता है। वो ट्रेडिशनल अनुवादों के अनुसार कहता है, क्या एक नश्वर इंसान ईश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है?
एक मिनट, यहाँ तो एक बहुत बड़ी तार्किक खामी ही नजर आती है। ये दावा ऐसा है जैसे कोई इंसान एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, सारी मीडिया को इकट्ठा करे और फिर माइक पर आकर बहुत ही गंभीर आवाज में घोषणा करे कि भाइयों और बहनों, आसमान नीला है।
हाँ, बिल्कुल ऐसा है।
मतलब ये तो सबको पता है कि कोई भी इंसान ईश्वर से ज्यादा धर्मी या शुद्ध नहीं हो सकता। इस बात को कहने के लिए किसी दिव्य दर्शन का नाटक रचने की क्या जरूरत है?
ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और डॉक्टर वॉल्टन ठीक इसी विसंगति की ओर इशारा करते हैं। स्रोत के अनुसार यहाँ अनुवाद में एक बहुत बड़ी चूक हुई है जिसने एलिफास की बात का पूरा मतलब ही बदल दिया।
अच्छा, तो मूल शब्द क्या था?
हिब्रू भाषा में जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है तहर। तहर का अर्थ सिर्फ शुद्धता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक अशुद्ध अवस्था से शुद्ध होने की प्रक्रिया।
अरे, तो अगर तहर का मतलब किसी अशुद्ध अवस्था से शुद्ध होना है, तो ये शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता, तो फिर उसके शुद्ध होने का सवाल ही कहाँ उठता है?
बिल्कुल, प्राचीन हिब्रू व्याकरण और धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर के लिए तहर शब्द का प्रयोग असंभव है। इसलिए क्या इंसान ईश्वर से अधिक शुद्ध हो सकता है, यह अनुवाद व्याकरणिक रूप से पूरी तरह गलत है।
तो सही अनुवाद क्या होना चाहिए?
सही अनुवाद ये होना चाहिए, क्या एक इंसान ईश्वर की नज़र में धर्मी हो सकता है, या क्या एक इंसान ईश्वर के नज़रिए से शुद्ध हो सकता है।
ओहो, मतलब एलिफाज ये कह रहा है कि ईश्वर के सामने कोई भी इंसान पूरी तरह निर्दोष नहीं हो सकता। हर इंसान में पाप की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अय्यूब को ये मानना चाहिए कि उसने कुछ न कुछ तो गलत किया ही होगा।
हाँ, वो अय्यूब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
मतलब एलिफाज एक बहुत ही सामान्य सी बात को एक बड़े आध्यात्मिक दर्शन का चोला पहनाकर पेश कर रहा है, सिर्फ अय्यूब को गलत साबित करने के लिए।
जी हाँ, वो अपनी बात को एक दिव्य अधिकार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अय्यूब इस दिखावे को बर्दाश्त नहीं करता। जब एलिफाज ये तर्क देता है तो अध्याय 7 में अय्यूब इसका जो जवाब देता है वो प्राचीन साहित्य के सबसे गहरे और तीखे व्यंग्य में से एक है।
मैंने स्रोत में पढ़ा है कि अय्यूब भजन संहिता का इस्तेमाल एक बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से करता है।
ये पैरोडी वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है।
हाँ, भजन संहिता 8 का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो ईश्वर की महिमा और इंसान के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। उसमें लिखा है, इंसान क्या है कि तू उसका इतना ध्यान रखता है। ये मूल रूप से एक बहुत सकारात्मक बात है कि ईश्वर इतनी विशाल रचना में भी इंसान जैसी छोटी सी चीज की फिक्र करता है। लेकिन अय्यूब की स्थिति में ये फिक्र एक बोझ बन चुकी है। अय्यूब इसी श्लोक को पूरी तरह पलट देता है। वो कहता है, हम इंसान क्या हैं कि तू हम पर इतनी नजर रखता है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे, मुझ पर से अपनी नजर हटा ले।
एकदम सही, अय्यूब यहाँ ईश्वर को एक रक्षक के बजाय एक नजर रखने वाले के रूप में देख रहा है जो लगातार बस उसकी गलतियां ढूंढ रहा है।
इसे अगर हम आज के ऑफिस के माहौल से समझें तो जरा सोचिए कि किसी कर्मचारी का बॉस उसके कंधे के ठीक पीछे खड़ा है। वो बॉस कर्मचारी के काम की हर छोटी डिटेल, हर की स्ट्रोक और यहाँ तक कि उसकी सांस लेने की गति पर भी लगातार नजर गड़ाए हुए है।
हाँ, एक बहुत ही माइक्रो मैनेजिंग बॉस।
बिल्कुल, ऐसे माइक्रो मैनेजिंग बॉस के सामने कर्मचारी यही सोचेगा कि उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। अय्यूब की भावना ठीक वैसी ही है। उसे लग रहा है कि ये दिव्य ध्यान एक सजा बन गया है।
ये बॉस वाला नजरिया अय्यूब की घुटन को बहुत अच्छे से समझाता है। उसे लगता है कि उस पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के दोषी करार दे दिया गया है, इसीलिए वो तंज कसते हुए कहता है, मैंने पाप किया है।
लेकिन स्रोत के अनुसार ये कोई असली स्वीकारोक्ति नहीं है, मतलब ये कोई माफी मांगने का तरीका नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं, ये कोई माफी नहीं है, ये काल्पनिक और व्यंग्यात्मक तर्क है। अय्यूब मूल रूप से ये कह रहा है, चलो मान लिया कि मैंने कोई पाप किया भी है, तो इससे तुम्हारे जैसे विशाल ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है? तुम इतने महान हो तो मेरी किसी छोटी सी गलती को नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते? तुमने मुझे ही अपना निशाना क्यों बना रखा है?
मतलब ये एक बहुत ही हताश इंसान की आवाज है जो सिर्फ थोड़ी सी राहत चाहता है।
हाँ, वो बस सांस लेना चाहता है।
और अय्यूब की ये हताशा धीरे धीरे गहरे विद्रोह में बदलती जाती है, और ये विद्रोह संवाद के आगे बढ़ने पर अपने चरम पर पहुंचता है, विशेष रूप से उस प्रसिद्ध श्लोक में जिसे अक्सर आस्था के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है।
हम बात कर रहे हैं अध्याय 13 के श्लोक 15 की। सदियों से पारंपरिक अनुवादों में इसे कुछ इस तरह पढ़ाया गया है, भले ही वो मुझे मार डाले, मैं उस पर आशा रखूंगा।
हाँ, ये एक बहुत ही आदर्श वाक्य लगता है जो एक ऐसे भक्त की छवि बनाता है जो हर हाल में बिना सवाल किए सब कुछ सहने को तैयार है।
लेकिन अगर अनुवाद में थोड़ी सी भी चूक हुई है तो ये पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। और स्रोत बताता है कि यहाँ हिब्रू पाठ में एक बहुत बड़ा भ्रम मौजूद है।
अच्छा, किस तरह का भ्रम?
हिब्रू के कैटिव पाठ में एक शब्द आता है जिस पर बहुत बहस है। यहाँ दो शब्द हैं जो बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लो और लो। एक का अर्थ है उस पर और दूसरे का अर्थ है नहीं।
बाप रे, एक छोटे से शब्द से अर्थ जमीन से आसमान तक बदल सकता है। अगर ये नहीं है तो ये वाक्य आस्था के समर्पण से बदलकर कुछ और ही बन जाएगा।
बिल्कुल, कुछ आधुनिक अनुवादों ने इसे ऐसे पढ़ा है, वो मुझे मार डालेगा, मेरी कोई आशा नहीं है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन ने जो विश्लेषण किया है वो अय्यूब के पूरे चरित्र और उस समय के संवाद के संदर्भ में सबसे सटीक बैठता है। वॉल्टन का अनुवाद है, भले ही वो मुझे मार डाले, मैं चुपचाप इंतजार नहीं करूंगा।
मैं चुपचाप इंतजार नहीं करूंगा, वाओ, ये अनुवाद अय्यूब की छवि को पूरी तरह से बदल देता है। वो एक आज्ञाकारी, सब कुछ चुपचाप सहने वाली पीड़ित से बदलकर एक विद्रोही बन जाता है जो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है।
हाँ, अय्यूब असल में एक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त उसे चेतावनी दे रहे हैं कि ईश्वर के सामने बहस करना आत्महत्या के समान है, लेकिन अय्यूब का तर्क यह है कि अगर वो चुप रहा तो भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ईश्वर से सीधा सवाल करेगा, भले ही इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो।
ये तो बिल्कुल किसी विसल ब्लोअर की तरह है, एक ऐसा इंसान जो एक बहुत बड़ी ताकतवर और सिस्टमैटिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उसे पता है कि वो सिस्टम उसे आसानी से कुचल सकता है, लेकिन फिर भी वो चुप बैठने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके लिए सच सामने लाना चुप रहकर जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अय्यूब उस पुरानी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है जो कह रही है कि अगर वो भुगत रहा है तो वो दोषी ही होगा।
और अय्यूब की इसी बेबाकी से उसके बाकी दोस्त और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। एलिफास के बाद बिलदाद और जुफर अपने तर्क सामने रखते हैं और वे दोनों अय्यूब को और भी ज्यादा संकीर्ण नजरिए से आंकते हैं।
बिलदाद और जुफर के तर्क भी उस समय के समाज की अलग अलग सोच को दर्शाते हैं ना? मतलब बिलदाद का नजरिया पूरी तरह से परंपरा और अतीत पर टिका हुआ है।
हाँ, बिलदाद पारंपरिक ज्ञान का प्रवक्ता है। वो इतिहास और पूर्वजों के अनुभवों का हवाला देता है। उसका मुख्य सिद्धांत है प्रतिशोध। बिलदाद मानता है कि दुनिया में एक सेट नियम है, अगर आग में हाथ डालोगे तो जलोगे।
कॉज एंड इफेक्ट।
बिल्कुल। चूंकि अय्यूब जल रहा है इसलिए बिलदाद का निष्कर्ष है कि अय्यूब ने जरूर आग से खेला होगा। वो अय्यूब के बच्चों की मौत को भी इसी क्रूर तर्क से सही ठहराता है कि उन्होंने कोई भारी पाप किया होगा।
ये बहुत ही कठोर सोच है। ये इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती कि दुनिया में कुछ चीजें बिना किसी कारण के भी हो सकती हैं। और फिर जोफर आता है जिसकी सोच शायद बिलदाद से भी ज्यादा सख्त है।
जोफर तो एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। उसके लिए कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। जोफर का मानना है कि अय्यूब जो ये विद्रोह दिखा रहा है और अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है।
मतलब हद है।
जोफर तो यहाँ तक कह देता है कि अय्यूब को अपनी गलतियों की पूरी सजा अभी मिली ही नहीं है। जोफर के अनुसार ईश्वर ने अय्यूब पर दया की है, वरना उसे इससे भी ज्यादा भुगतना चाहिए था।
ये तो सच में दिल दहला देने वाली स्थिति है। एक इंसान जो पहले ही राख के ढेर पर बैठा है, अपना सब कुछ खो चुका है, उसके सामने बैठकर तर्क दिया जा रहा है कि उसे और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि उन दोस्तों का अपना सुरक्षित संसार और उनका वो सिद्धांत बचा रहे।
और यही इस पूरे पहले संवाद चक्र का मुख्य सार है। अगर हम अध्याय 3 से 14 तक के इस पूरे हिस्से का निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि दोस्त सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं।
वे चाहते हैं कि अय्यूब किसी भी तरह अपनी गलती मान लें, चाहे वो गलती काल्पनिक ही क्यों ना हो, बस वो कबूल कर ले।
हाँ, वे चाहते हैं कि अय्यूब पछतावा दिखाए ताकि ईश्वर खुश होकर उसे उसका सारा खोया हुआ सामान और संपत्ति वापस दे दे। दोस्तों की नजर में ये पूरी बहस, ये पूरी धार्मिकता सिर्फ उसी सामान को वापस पाने की एक प्रक्रिया है। वे धर्म कोई टूल की तरह देख रहे हैं जिससे भौतिक सुख वापस पाया जा सके।
लेकिन अय्यूब इस लेन देन वाली व्यवस्था को पूरी तरह से नकार देता है। वो बार बार ये स्पष्ट करता है कि उसे अपना खोया हुआ सामान वापस नहीं चाहिए। वो अपने बच्चों, अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए ईश्वर से समझौता नहीं कर रहा है। उसकी धार्मिकता और उसकी सच्चाई किसी इनाम के लालच पर आधारित नहीं है।
और यही बात इस प्राचीन स्रोत को आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी नैतिकता और धार्मिकता का असली आधार क्या है।
हम अपनी जिंदगी में सही काम क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है? मतलब हम सब कहीं ना कहीं ये मानना चाहते हैं कि अगर हम अच्छे बने रहेंगे तो भविष्य में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये दुनिया को एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण जगह महसूस कराता है।
लेकिन ये गहन अध्ययन इस सुरक्षित भावना को सीधे तौर पर चुनौती देता है।
और अंत में स्रोत से निकलकर जो विचार सामने आता है वो किसी को भी असहज कर सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि दुनिया में अच्छाई का कोई निश्चित इनाम नहीं है और बिना किसी गलती के भी सब कुछ छिन सकता है, अगर ये पूरी लेन देन वाली व्यवस्था टूट जाए, तो क्या इंसान के अंदर बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी इनाम के अच्छे बने रहने की हिम्मत है? क्या हम बिना किसी फायदे के सिर्फ इसलिए सही काम कर सकते हैं क्योंकि वो सही है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस प्राचीन पाठ से निकलकर आज भी गूंज रहा है और जिस पर हम सभी को अकेले में गहराई से विचार करने की जरूरत है।